ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कीजिए। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन कीजिए, ज्वाइनिंग बटन हम नहीं देते हैं। और इधर देखिए, ये QR है, इसको स्कैन कीजिए और हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज पुनः सुप्रीम कोर्ट में EVM मैटर की सुनवाई फिर से आरंभ हुई और प्रशांत भूषण की आज तो भाई पूरी तरह से, जिसको हम कहें कि फायर पे रख दी गई। इतनी बुरी बेइज्जती तो मुझे नहीं लगता प्रशांत भूषण की तब भी हुई थी जब उनको कन्विक्ट किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जब उनको कन्विक्ट किया तब तो उन्होंने विक्टिम प्ले कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो बार बार अनेकों बार VVPAT के लिए, EVM के लिए बार बार, पता नहीं उनको क्या लग रहा है कि भैया EVM जो है अगर वो ख़त्म करवा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। पहले वो कांग्रेस को चुनाव हराते रहते थे और आम आदमी पार्टी को जितवाते रहते थे, हालांकि आम आदमी पार्टी जब तीनों बार सत्ता में आई है तो उसी EVM से आई है, दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में आई है उसी EVM से आई है, और हर बार पहली बार को छोड़ के बाकी सारी बार वो बम्पर मेजॉरिटी से आई है, बम्पर मेजॉरिटी से। दिल्ली में पहली बार जो है जिस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तब वो 28 सीटें ले आई, सरकार बनाई, क्योंकि कांग्रेस मूर्ख थी। उसके बाद दूसरी बार वो 67 सीटें ले आई 70 में से, और तीसरी बार भी 70 में से 62 सीटें ले आई उसी ईवीएम से। और पंजाब में 117 में से 92 सीटें ले आई उसी ईवीएम से। लेकिन फिर भी प्रशांत भूषण जो है ईवीएम के लिए पहुंचे हुए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ईवीएम पे मैं सेशन भी किया था, एक पूरा सेशन किया था डॉक्टर आलोक शुक्ला के साथ में, जो एक्स डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं 5.5 साल तक, और वो आपको हमारे जयपुर डायलॉग्स पर मिल जाएगा। आज जो खास बात हुई, जो उन्होंने कहा कि साहब की ये VVPAT में ये प्रॉब्लम है, तो उसको जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, उन्होंने एक बड़ी मार्के की और बड़ी तगड़ी बात कह दी बेचारे प्रशांत भूषण को। उसने सपने में भी ये कल्पना नहीं की होगी कि वो बार बार जो अपनी जो है वो बातें रख रहा है उसका इस प्रकार का जवाब मिलेगा। उसने कहा ऐसा है प्रशांत भूषण जी, देखिए हम सब लोग 60 साल के ऊपर के हैं और हमने सबने जो है वो पेपर बैलेट का सिस्टम देखा हुआ है, और हमको सबको पता है कि पेपर बैलेट के ज़माने में क्या हुआ करता था। हो गई ना घनघोर बेइज्जती, ऐसा बुरा क्या हो सकता है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन प्रशांत भूषण अगर समझ जाए और प्रशांत भूषण को अगर थोड़ी शर्म आ जाए, प्रशांत भूषण को लज्जा आ जाए, तो फिर प्रशांत भूषण ही क्यों रहे। वो तो इतना बेशरम है कि बस अलग अलग बातें कि साहब ऐसा है साहब कि या तो आप ऐसा करिए कि ये VVP ये पूरा जो है ये EVM को हटा के पेपर बैलेट का सिस्टम ले आइए। उस पर आपने टिप्पणी सुनी ली, ये क्या कहा जज साहब ने, तो एक तो बात स्पष्ट हो गई कि भैया पेपर बैलेट तो किसी भी हालत में नहीं आने वाले, कुछ भी कर लो तुम। EVM वैसे भी अभी तो ECI का जवाब जो है वो पूरी तरह से उसी जवाब में से पढ़ पढ़ के बोल रहे थे वैसे, क्योंकि जवाब जो है वो रिकॉर्ड पे तो है ही ECI का, तो उसी में से पढ़ पढ़ के वो स्वयं काउंटर कर रहे थे कि इसमें तो ये लिखा है आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसमें तो ये लिखा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि साहब पेपर बैलेट ले आइए, और अगर पेपर बैलेट नहीं हो तो साहब वो जो स्लिप है ना, वो स्लिप उसके हाथ में आनी चाहिए, और वो जो अपने हाथ से फिर वो उसको डिपॉजिट करे और फिर पूरी की पूरी जो VVPAT है उनकी काउंटिंग हो। जानते क्या कहा कोर्ट ने कहा कि ऐसा भाई हमारा अनुभव ये कहता है कि ह्यूमन इंटरफेस जितना कम होगा ना उतनी ज़्यादा जो प्रक्रिया है वो स्वच्छ होगी। आप कह रहे हो कि ये व्यक्ति के हाथ में दिया जाए, और व्यक्ति के हाथ में देने के बाद क्या होता था हम सब जानते हैं। मैंने अपना जो अनुभव है कई बार आप लोगों से साझा किया है कि किस तरह से लोग जो है वो बैलेट पेपर ले जाते थे, उसमें स्याही डाल देते थे। अब आप उससे VVPAT जे वाले से अगर उसको जहाँ VVPAT बॉक्स है ना उसमें डालो, अगर उसमें वो स्याही डाल दे तो पता चला पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे काउंट करोगे VVPAT? हमने सबने देखा है VVPAT का बॉक्स ले जाके तालाब में डाल देंगे, सब जगह तालाब होते हैं बिहार बंगाल में। 67 रिकाउंट ऑर्डर किए थे मैंने एज ऑब्जर्वर बिहार के एक इलेक्शन में 1999 कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराजगंज, और उसमें से 90% में क्या शिकायत थी कि साहब इसमें पानी डाल दिया या इसमें सही डाल दी या बैलेट बॉक्स उठा के तालाब में डाल दिया। क्या करोगे आप? EVM को यदि तालाब में डाल भी देंगे ना तो वापस भी EVM से होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए आज तक मैंने नहीं सुना कि EVM को तालाब में डालने की किसी भी प्रकार की शिकायत आई हो ना, एक भी EVM तालाब में नहीं डाली गई। बैलेट बॉक्स रोज तालाब में डाले जाते थे, ये इनका पॉइंट नंबर 2 था। और तीसरा पॉइंट ये था कि साहब अगर वो भी संभव ना हो तो साहब ऐसा करिए ना कि साहब कि ये जो है इसकी जो VVPAT है इसका ग्लास चेंज कर दीजिए, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ये दिखे, ये जो इसमें कटती है स्लिप वो दिखना चाहिए, इस तरह की बातें। मतलब पूरी तरह से जिसको कहते हैं टाइम वेस्ट वाला मामला, किसी भी तरह से ये प्रूव करने का, ये सिद्ध करने का प्रयास करते रहना कि भाई जो है वो EVM में गड़बड़ी है, EVM का मैनिपुलेशन होता है। जो सवाल पूछे वो वही सवाल है जो हम और आप पूछते हैं लगातार कि साहब ऐसा है, सुनिए जरा, ये वकील हैं, ये वकील इस तरह की बात करते हैं कि साहब उसमें जो है ना वो क्या करेंगे साहब कि उसमें किसी तरह का टाइमर लगा दिया जाएगा। अरे भाई कहाँ से लगाया जाएगा टाइमर? प्रोग्राम में लगाया जाएगा या कि जिस टाइम पे EVM प्रिपेयर होती है उस टाइम पे लगाया जाएगा? जिस टाइम पे EVM प्रिपेयर होती है उस टाइम पे मॉक पोलिंग होती है प्रिपेयर करने के बाद में, फिर कैसे टाइमर लगेगा? आपको पता है क्या कितना टाइम इलेप्स करेगा उसके बाद में? नहीं, वो टाइमर ऐसा लगे होगा कि साहब मॉक पोल होने के बाद में वो 10 बजे से चालू होगा वो टाइमर, और 4 बजे वो 10 से 4 का वो टाइमर होगा, 10 बजे चालू कर दिया जाएगा और 4 बजे जो है वो इस तरह से टाइम कर देगा कि वो वोट जो है उधर से उधर हो जाएगा उतने पीरियड में। इतने मूर्ख हैं ये लोग। सिस्टम बता देता हूँ, EVM को पता नहीं होता कि उसके किस बटन पे कौन सा सिंबल लगेगा। ये सारा कार्य जो है वो तब चालू होता है जब कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो जाती है, सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है स्क्रूटनी के समय, और विड्रॉल हो जाते हैं उसके बाद में फिर EVM प्रिपेयर की जाती है, और EVM प्रिपरेशन के बाद उस पर मॉक पोल्स होते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, EVM अलॉट कैसे होती है भाई? आपको पता नहीं होता है कि EVM कौन सी अलॉट होगी? जो EVMs रिक्विजिशन की जाती हैं जो स्टेट हेडक्वार्टर पे आती हैं, पहले स्टेट हेडक्वार्टर पे रैंडमाइजेशन होता है उसका। रैंडमाइजेशन यानी कि कौन सी EVM कहाँ जाएगी ये कंप्यूटर तय करता है सारे कैंडिडेट्स के, सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने। फिर जब डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो फिर वहाँ पे सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन क्या होता है, उस रैंडमाइजेशन में यह तय होता है कि कौन सी EVM जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब सेगमेंट्स में किस में जाएगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसी जब हो जाती है अलॉट तो उसके बाद फिर एक थर्ड लेवल रैंडमाइजेशन होता है, उसमें यह तय होगा कि कौन सी सीरियल नंबर सबका होता है, कौन सी EVM जो है वो किस बूथ में जाएगी। इतना होने के बाद में कौन सी EVM में कौन सा टाइमर पहले से फिट किया जा सकता है प्रोग्राम करके, ये तो प्रशांत भूषण ही बता सकते हैं। इसलिए लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे थे कि भैया ऐसा है, ये बताओ कि बाद में कैंडिडेट को अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है ना तभी तो प्रॉब्लम होगी ना, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो कैंडिडेट के पास राइट है चैलेंज करने का, हाँ वो तो है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं वो प्रॉब्लम जो है हम केवल किसी एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा प्रोसेस है उसकी शुचिता की बात कर रहे हैं। धीरे से ईसीआई के वकील ने यह भी कहा था कि भाई हम अभी यहाँ पर अभी लोकल स्टैंडाई की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन जो है सक्षम है इसको चैलेंज करने के लिए। वैसे कैंडिडेट को पूरा राइट होता है चैलेंज करने के लिए, यदि उसको लगे कि गड़बड़ हुई है चैलेंज कर सकता है। इसलिए बिना कोई भाव दिए और ईसीआई से एक नोट मांग लिया गया और उनको कहा कि अच्छा ठीक है अब हम 18 तारीख को देखेंगे, 19 तारीख से चुनाव आरंभ हो रहे हैं भाई दबे। तो मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो नाटक किया गया था कि ये दिखाने का कि साहब कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और जैसा वो कह रहे हैं कि वो 400 या 400 के आसपास पहुंच जाती है तो इनको पूरा एक मौका रहे कि ये किसी भी तरह से इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मोदी की 3.0 सरकार को ये सिद्ध कर सके दुनिया के सामने कि ये सारे के इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। लेकिन सफलता तो नहीं मिली और न मिलने वाली है जिस प्रकार से जो भी आज चर्चा हुई उस प्रकार से उसके अनुसार। वैसे तो आज योगी आज हमारे बाबा रामदेव के केस में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले थोड़े ठंडे पड़ गए, वो बाद में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।